देखते हैं तफसीर सूरतुल कहफ आयत नंबर 1-12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो कलमा है जिससे ये सूरत भी शुरू हुई और कुरान करीम में मजीद और 4 सूरतें इसी कलमे से स्टार्ट होती हैं, जिनमें से 2 सूरतें हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी हैं वो 2 सूरतें? सूरह फातिहा और सूरतुल अनआम। और 2 हम आगे पढ़ेंगे, सूरह सबा और सूरह फातर। तो कुल 5 सूरतें कुरान करीम में जो अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होती हैं। अब हम्द का माना क्या है? हम्द, जैसे हम देखते हैं तमाम शुक्र, तमाम तारीफ, बिल्कुल सही है, लेकिन तमाम तारीफ, तमाम अच्छी कमालात, ये शुक्र के जज्बे के साथ और मोहब्बत के साथ जब इंसान कहता है तो मोहब्बत के साथ ताजीम भी आ जाती है। तो तारीफ करना उसकी जिससे इंसान बहुत मोहब्बत करता है और जिसकी बहुत ताजीम करता है शुक्र के जज्बे के साथ, ठीक है? तो इसमें तारीफ भी है, इसमें शुक्र भी है। तो इंसान जब कहता है ये बात अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका दिल शुक्र के जज्बे के साथ भरा होता है। अल्लाह ताला की नेमतों के इतराफ के तौर पे ये बोलता है वो कि अल्लाह सारी तारीफ। ये जो अलिफ लाम है ना, इसको कहते हैं लाम इस्तेगराक। इसका मतलब होता है हर किस्म की तारीफ, अच्छी तारीफ लिल्लाह, लिए अल्लाह के। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लू, ए अल्लाह सारी की सारी तारीफ तेरे ही लिए। अगर यहां पे होता हमदन लिल्लाह तो होता कि हमदन लिल्लाह लदी होता, तो तारीफ है अल्लाह के लिए, तो मतलब है कि उसकी तारीफ सिर्फ इस चीज के लिए। मगर जब हमने कह दिया कि सारी की सारी तारीफ है, तमाम किस्म की तारीफ उसके लिए, ये जो कलमा अलहम्द का है ना, आप देखें पिछली सूरत एंड जो होती है उसमें क्या कहा गया, वकुलि अलहम्दुलिल्लाह, और कह दीजिए, क्या कह दें, अल्हम्दुलिल्लाह कह दें। तो जैसे आपको कहे, आप कहें थैंक यू, तो आप फिर आगे से कहते हैं थैंक यू। बच्चे को सिखाते ना आप, यहां पे कहा गया आप कह दें अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगली सूरत ही अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट हो रही। इसी तरह पिछली सूरत आप देखें सुबहान अल्लाह से स्टार्ट हो रही, क्योंकि एक अमेजिंग चीज अल्लाह ताला ने बताई, और अब क्या है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे ही है जैसे कि सुबहान अल्लाह ही व बिहम्दी ही, पीछे सुबहान अल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इतना बड़े कलिमा है कि हदीस में आता है कोई इंसान ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला उसको कोई नेमत देता है वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है उस नेमत से जो उसको दी गई। कोई भी नेमत अगर आपको मिली है ना, चाहे वो सेहत की है, चाहे आपको $1 बिलियन मिल गया है, चाहे आपको दुनिया जहान की कोई चीजें अच्छी चीजें मिल गई, लेकिन घर मिल गए, गाड़ियां मिल गई, जो भी मिल गया, फरमाया हर नेमत जो इंसान को कोई भी दी गई उससे बेहतर कलिमा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह का कलिमा बाकी रह जाना है और नेमत जो भी मिली है वो खत्म हो जानी है, चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ियां, चाहे वो माल है, चाहे वो इक्तदार है, कुछ भी है, सुभान अल्लाह। और हम्द जो है ना एक मदा भी होती है, वो झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है, और वो उस वक्त होती है जब इंसान को किसी से कोई फायदा मिलता है तो वो उसकी मदाह करता है। लेकिन हम्द उससे बड़ी चीज है, वो इसलिए नहीं सिर्फ की जाती कि इससे मुझे कोई फायदा मिल रहा है या इससे मुझे कोई फायदा मिल सकता है, बल्कि ये वो तारीफ है कि उसके लिए की जाती है जो इसके काबिल है, वो डिजर्व करता है उस तारीफ को। ठीक है, तो यानी अल्लाह ताला डिजर्व करता है, चाहे उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया हुआ, चाहे वो कुछ भी ना मुझे दे, तब भी उसके लिए हम्द है। ठीक है, तो तमाम की तमाम हम्द अल्लाह के लिए। तो हम बहुत बड़ा कलिमा बोल रहे होते हैं जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है जन्नत में सबसे पहले उन लोगों को बुलाया जाएगा जो दुख और सुख में और हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले होते हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अच्छी काम होता था तो फरमाते थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही तत्तिमु सालिहात, और कुछ गैर मुआफिक काम होता था तो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। तो मोमिन का हर वक्त जो है ना वो इसी के बीच में होगा। जाहिर है या तो कोई अच्छी बात होगी या कोई बुरी बात होगी, लेकिन वो हमेशा ही अल्हम्दुलिल्लाह में ही रहता है, उससे बाहर नहीं निकलता। और ये वो कलमा है जो मीजान को भर देता है। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि उसकी हम्द की जाए। और कयामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक झंडा होगा जो हम्द का झंडा होगा, और ये उम्मत हम्मादून कहलाती है, बहुत हम्द करने वाली। तो जाहिर है आप हम्द करेंगे, आप तो उस झंडे के नीचे आप भी वहां आ जाएंगे। ठीक है, तो हम्द करते रहना है अल्लाह ताला की, हर हाल में हम्द करनी है, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना। ए अल्लाह, सारी तारीफ तेरे लिए क्योंकि तू इसको डिजर्व करता है, पूरी मोहब्बत के साथ और ताजीम के साथ मैं ये कहती हूँ, क्योंकि सारी अच्छी सिफात तेरी है, परफेक्शन तेरे अंदर है। और लिल्ला जो है ना वो बताता है कि लिए अल्लाह के लिए, खास उसी के लिए, उसी को बिलोंग करती है ये, क्योंकि और कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें सारी परफेक्ट सिफात हो, अल्लाह के सिफात तो कोई भी नहीं। और जब हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम कह रहे हैं अल्लाह जितनी नेमतें मेरे पास है ना वो सिर्फ तेरी तरफ से ही तो हैं। इसीलिए बेस्ट दुआ है और ये बेस्ट जिक्र है। और लिल्लाह में दो बातें हैं, एक तो जो मैंने आपको बताई कि अल्लाह ही को के लिए है सारी तारीफ और सारा शुक्र, और नंबर टू इसमें आती है अल्लाह ताला डिजर्व करता है, उसका हक है, क्योंकि उसके उसके जैसा कोई और है ही नहीं ना, लैसा कम इसलिए शय। तो यहाँ पे ये लिल्लाह का ली जो है ना ये खास करने के लिए, अल्लाह ही के लिए और अल्लाह ही का हक है, दोनों माने इसमें, समझ आई बात। और अल्लाह का नाम उसके माने बहुत सारे हैं, लेकिन अल इलाह एक कॉमनली जो आप ज्यादा याद रख सकते हैं, अल और इलाह को जमा कर दिए तो अल्लाह बन गया। और इलाह के भी और बहुत से जहां माने हैं, वहां ये माना है कि जिससे इतनी इंसान मोहब्बत करे, इतनी मोहब्बत करे कि अपने आप को उसके आगे गिरा दे, बिछा दे, सबमिट कर दे उसके आगे, वो महबूब जिसके लिए इंसान अपना आप दे दे, उसकी पूजा करे, वो है इलाह, सुभान अल्लाह। तो जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हम क्या कह रहे हैं कि वो महबूब जिसके आगे मैं अपने आप को बिछा दूं, गिरा दूं, जिसकी मैं पूजा करती हूँ, कोई और नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह है। व्हाट अ फ्रेज, क्या बात है इसमें अगर समझ के कही जाए। और आप देखें अल्हम्द का जो लफ्ज है ये लिल्ला के अलावा और किसी लफ्ज के लिए साथ नहीं आता, आप कहीं नहीं, यानी अल्लाह ताला के और अस्माए हुस्ना के साथ भी नहीं आता, अल्हम्दुलिर्रहमान अल्हम्दुलिर्रहीम ऐसा कुछ भी नहीं आता। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह क्यों आता है बताएं, सिर्फ यही क्यों आता है? एक तो इसमें बात ये है कि देखें जो अल्लाह का नाम है ना इसमें उसकी सारी सिफात आ जाती है, सारी सिफात, कि वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो गफूर भी है, वो अजीज भी है, वो रजाक भी है, वो قہار بھی ہے، وہ قوی بھی ہے، وہ متین بھی ہے، ساری صفات اس ایک نام میں ہے. تو جب اگر آپ اکیلے اکیلے کہتے الحمد للرحمن، الحمد للرحیم، الحمد للغفور، تو وہ صرف اس اسپیسیفک اس کی صفت کا خیال ذہن میں آتا اور صرف اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو ساری تعریفیں، وہ سارے کمالات اس کے ہیں، ساری چیزیں اس میں آ گئیں. اس ذات کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ذات ہی ڈیزرو کرتی ہے جس میں یہ سارے کمالات ہیں. اس میں رحم بھی ہے، اس میں غلبہ بھی ہے، اس میں معاف کر دینا بھی ہے، اس میں سب چیزیں آ گئیں، جو بھی اسماء حسنا ہے، جو ہم جانتے بھی ہیں اور جو ہم نہیں بھی جانتے. اللہ اکبر، یہ ہوا الحمدللہ. اچھا، یہ جو پہلی پانچ آیات ہیں نا، یاد رکھیے گا ان میں قرآن کریم کا مقام بتایا گیا، قرآن کریم کی فضیلت اہمیت یہ بتائی گئی ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھ کے سورت کو پڑھیے گا، یہ سورت ہمیں جمعے کے دن پڑھنے کو کہی گئی، یعنی ایوری ونس اے ویک آپ اس سبق کو دہرا رہی ہیں. کوئی نہ کوئی تو خاص باتیں ہوں گی سورت میں کہ جو ہمیں کہا گیا ایوری ویک آپ اس کو ریپیٹ کریں، یعنی کہ ایک دفعہ زندگی میں پڑھ لی تو بس کافی ہے، ایوری ویک. تو کوئی نہ کوئی میسج ہے جو اتنا امپورٹنٹ ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ میسج دینا چاہتا ہے اور اس کے ریمائنڈر چاہتا ہے کہ ریمائنڈ ہوتا رہے، وہ میسج ہمیں بار بار دہرایا جاتا رہے تاکہ ہم یاد رکھیں اس میسج کو. کوئی تو امپورٹنٹ چیز ہوگی، ونس اے ایئر کیوں نہیں کہہ دیا، رمضان کے رمضان کیوں نہیں کہہ دیا، مہینے میں ایک دفعہ کیوں نہیں کہہ دیا، نہیں ہر ہفتے یاد کروں. اب الحمدللہ آگے کیا بات آ رہی ہے، الذی انزل، وہ ذات. کون سی ذات؟ پیچھے کون ہے؟ سب موصول ہے نا، یہ الذی پیچھے کس سے کنیکٹڈ ہے؟ اللہ، اللہ وہ ذات ہے. اب ایک بات یاد رکھیں، الحمدللہ جہاں جہاں پہ آیا نا سورتوں میں بھی آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، تو کوئی الحمد کے بعد نا کوئی بہت بڑی بات کو بتایا گیا، رب جہانوں کا، کائنات کا. اور عالمین میں پتہ ہے کون کون ہے؟ کون کون ہے بتائیں، کون کون آ جاتا ہے عالمین؟ عالمین میں ہر چیز آ جاتی ہے سوائے اللہ کے. سبحان اللہ، ساری مخلوق. گن سکتے ہیں آپ مخلوق کو؟ جان سکتے ہیں آپ مخلوق کو؟ جانتے تک بھی نہیں ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ وہ رب ہے، ان کا مالک ہے، ان کا خالق ہے، ان کو رزق دینے والا ہے، ان کو قائم رکھنے والا ہے، ان کو پالنے والا ہے، وہ سارے سب چیزوں کو. کتنی بڑی بات ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری دفعہ جب الحمد کا لفظ آیا تو پھر بھی بہت بڑی بات کی، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا، ظلمتوں اندھیروں اور نور کو پیدا کرنے، وہاں پہ بھی الحمد کا لفظ. بہت بڑا کوئی بہت ایکسٹراڈنری بات، کوئی بہت بڑا شاہکار، اس کا ذکر کیا جاتا ہے. سمجھ آئی؟ اب یہ بات سمجھ لی نا آپ نے. اب آئیں یہاں پہ تیسری جگہ الحمد کا لفظ آیا، یعنی الحمد سے بات شروع کی. اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ہر چیز پہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے صحت دی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانا دیا، الحمدللہ اللہ نے مجھے وجود دیا، یہ مجھے کشائش دی، مجھے چھت دی، مجھے آنکھیں دی، مجھے کان دی. ہم کتنی باتیں کریں گے نا الحمدللہ کے ساتھ. یہاں پہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بات کی گئی، کسی اور ہی نعمت کا ذکر کیا گیا جس کو شاید، میں بڑے دکھ سے کہتی ہوں، شاید اس کو ہم نے کبھی نعمت سمجھا ہی نہیں. وہ کیا ہے؟ اس رب کا شکر، اس کی ساری تعریف ہے جس رب نے، جس اللہ نے کیا کیا، انزل على عبده الكتاب, جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب. میں کیا کروں کہ ایک ایک لفظ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر پورا پورا لیکچر ہو. آج میں سوچ رہی تھی کہ کیسے ہم یہ سبق مکمل کریں گے, اتنا کچھ ہے اس میں. انزلا اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں, ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نازل. تم کہاں سے نازل ہوئے, یہ منو سلوا نازل ہو گیا. ہم اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں, اتارنے اتارا یہ لفظ بولتے ہیں. اس کا مطلب قرآن کہاں سے آیا, اوپر سے نیچے آیا, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے نازل کیا. تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اوپر ہے. عقیدہ درست کرتی ہیں یہ آیات, یہ کہنا اللہ ہر جگہ موجود ہے, یہاں بھی اللہ وہاں بھی اللہ, کیا درخت میں بھی اللہ, زمین کے اندر بھی اللہ, پانی میں, نعوذ باللہ, ایسی بات کہنا صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں ہے, آسمانوں پہ ہے. اسی لیے قرآن وہاں سے نازل ہوا. یہاں سے کیوں نہیں نازل ہو گیا, پانی سے آ جاتا, زمین سے آ جاتا, اللہ تو ہر طرف ہی, اوپر سے نیچے آیا ہے. تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے, ہم اپنی طرف سے تو بڑا بول رہے ہوتے ہیں کہ بڑی اللہ کی تعریف کر دی, یہ نہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ اپنی طاقت, اپنے غلبے, اپنی قدرت, اپنے علم, اپنی سماعت, اپنی بصارت, ان اپنی قوتوں, اپنی قدرتوں کے معاملے میں اس کے ہر جگہ ہے قدرت, ہر جگہ علم ہے, ہر جگہ اس کی نظر ہے, ہر جگہ اس وہ سن رہا ہے, ہر جگہ اس کی پاور ہے, ہر جگہ سے وہ باخبر ہے. مگر یہ کہنا کہ وہ ہر جگہ پہ موجود, یہاں پہ بھی ہے, وہاں پہ بھی, وہاں پہ بھی, وہاں پہ بھی, ہر چیز کے اندر اللہ ہے, پتے کے اندر اللہ, پھول کے اندر اللہ, ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں کہنا, ٹھیک ہے. اللہ آسمانوں کے اوپر ہے, فوق سبع سماوات. سو سے زائد دفعہ حدیث میں بھی اس چیز کے بارے میں ثبوت ملتا ہے کہ وہ اوپر ہے, اپنے عرش پہ مستوی ہے, قرآن کہتا ہے. تو کیا عرش ہر جگہ ہے؟ تو عقیدے کی درستگی ضروری ہے اس میں. تو اس نے نازل کی علی عبدہ الکتاب, اپنے بندے پر. یہاں پہ کیوں نہیں کہا علی حبیبی, علی خلیلی, علی رسولی, یہ کیوں نہیں کہا, بلکہ بندہ کہا. اس لیے کہ انسان کا جو شرف ہے, جو اس کا آنر ہے اللہ کے ہاں, وہ اس میں ہے کہ وہ اس کا بندہ بن کے رہے, اللہ کا بندہ بن کے دکھائے, اس کی غلامی میں آ جائے. سمجھ جائے, انسانوں کے اندر, انسانی معاشرے کے اندر غلام سب سے لوئسٹ سٹیٹس کا بندہ سمجھا جاتا ہے, اس سے نیچے کوئی چیز نہیں ہوتی. غلام سے نیچے, سب سے نیچے ایک غلام ہوتا ہے, یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں معاشرے کے اندر, اس کو کچھ بھی, کوئی اس کا کوئی بھی مقام نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ انسانوں میں ہے. لیکن جب اللہ کے سامنے انسان ہو تو اس کی عزت کس میں ہے کہ وہ اس کا عبد بن جائے, وہ اس کا بندہ بن جائے. یہ انسان کی عزت ہے, اس میں انسان کا شرف ہے, اس کے اندر اس کی بڑائی ہے. جتنا انسان اللہ تعالیٰ کے عبد ہونے کی انتہا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بلند کرتا ہے. جتنا انسان غلامی کی انتہا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی عطا کرتا ہے. تو عبد یعنی اللہ کا بندہ, اس کا غلام, اسی کے لیے تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ انسان اللہ کی عبادت کرے, اس کا عبد بن کے رہے. عبودیت میں عاجزی بھی ہے, خود کو نیچا کر دینا, خود کو بالکل حقیر کر دینا, چھوٹا کر دینا, محبت کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ, یہ ہے عبدیت. क्या हम अल्लाह के वाकई बंदे हैं? नाम अब्दुल्ला है, नाम अब्दुल रहमान है, अमतुल्ला अल्लाह की बंदी, लेकिन क्या गुलामी है जिंदगियों में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा कितना बुलंद है, तमाम इंसानों में सबसे बुलंद, लेकिन अल्लाह ताला आपको जो टाइटल देता है, आप सूरह इसरा भी उठा के देख लें, सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही, सुभान अल्लाह ताला की जात सुभान है जो अपने बंदे को सैर के लिए लेकर गया। वहां पे भी अब्द का जिक्र, यहां पे भी अब्द का जिक्र, इससे पता चलता है अल्लाह ताला के नजदीक इससे बड़ा कोई मकाम नहीं हो सकता कि इंसान गिर जाए उसके आगे, झुक जाए उसके आगे। सब अपनी अनाएं, सब अपनी मर्जियां, सब अपनी ख्वाहिशात एक तरफ रख दें, बिछ जाएं, झुक जाएं, गिर जाएं, सिर्फ फिजिकली नहीं सजदे में, अपना सब कुछ उसके आगे डाल दें, सबमिट कर दें। तो सुभान अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अन्ज़ला अला अब्दिहिल किताब, कि उसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की। किताब किससे? कतबा से। कतबा कहते हैं लिखी हुई चीज को, और लिखी हुई चीज यानी इससे पता चलता है कुरान तो उस वक्त लिखा हुआ थोड़ी आया था, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पे उतरा था, लेकिन इसमें ये पता चलता है कि ये लिखा जाएगा, इसकी बशारत है, लिखा जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा। और ये लिखा जा सकता है, ये भी इसमें पता चलता है, और उम्मते मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि वो इसको लिखे, इसको सेव करे और इसकी आगे कॉपीज बनाए और इसको आम करे। तो कुरान का एक नाम भी है अल किताब, कुरान करीम के बहुत सारे नाम है, बाज़ उलमा ने तो 90 से भी ज्यादा नाम बताए, अज़िक्र, अल फुरकान, अर रहमा, अल हुदा, अशिफा, अन नूर, अर रूह, अल मौइदा, अल अज़ीज़, अल मजीद, बहुत सारे नाम है। तो कुरान करीम के नजूल पर, जो अल्लाह ने अपने बंदे पर नाजिल किया, इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कहा गया। समझ आई बात? यानी ये इतनी अजीम नेमत है कि अल्लाह ताला की हम्द बयान की, कि मैंने आपको बताया ना अल्हम्द का लफ्ज, ये बहुत बड़े कारनामों, बहुत बड़ी बात के ऊपर कुरान पाक में आया है, और उनमें से एक क्या है कि अल्लाह ताला ने ये इतनी बड़ी नेमत दी है। कभी इसको नेमत समझ के देखा भी है आप? क्योंकि जब इंसान किसी चीज को नेमत समझता है ना, तो नेमत पे शुक्रगुजारी वाजिब हो जाती है। कभी इसकी शुक्रगुजारी की? कभी अल्लाह ताला को ये आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह तूने ये नेमत मुझे दी? कब लास्ट टाइम आप इस नेमत पे खुश हुए थे और आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था? और इस उम्मत पे कितने लोग हैं जो इस कुरान को नेमत समझते हैं? और नेमत का कोई हक भी तो होता है, हाँ, कोई हक होता है नेमत का या नहीं? नेमत का कोई हक होता है ना, इसका हक क्या है कितने लोग जानते हैं? कितने लोग हैं जो इस नेमत के हक अदा करने में लगे हुए? और ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अल्लाह ताला ने ये नेमत की है, और आप इस नेमत की वजह से रसूल बने। जब ये कुरान नाजिल नहीं हुआ था तो आप रसूल नहीं कहलाए, ये कुरान के नजूल से आप रसूल कहलाए ना, ये वही आई, इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, ये कर वही आई थी तो आप रसूल बने हैं ना, कुरान उतरा है तो रिसालत मिली है, इतना बुलंद मुकाम मिला है। आज भी जो बुलंद मुकाम पाना चाहता है, अल्लाह के नजदीक दर्जे पाना चाहता है, اس قرآن کے بغیر تو ممکن نہیں. یہ اتنی بڑی فیور ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت پہ کی ہے, اس کا اتنا بڑا فضل ہے, اس کو مینشن کیا گیا یہاں پہ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بیسٹ وہ ہے جو قرآن پڑھتا سیکھتا سمجھتا اور اس کو سکھاتا ہے, قرآن کی تعلیم لیتا ہے اور تعلیم دیتا ہے. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. تو جتنی قرآن سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں نا, اتنا زیادہ اللہ کی غلامی میں آئیں, اس کے عبد بنے تو قرآن سے فائدہ ملے گا, اتنا ہی قرآن سے آپ سیکھیں گے. تو اور یہ بھی پتا چلا کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کی ہے, جبرائیل علیہ السلام صرف لانے والے ہیں, جبرائیل علیہ السلام نے اس کو خود نہیں بنایا. اور قرآن کریم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے, اللہ عبدی ہی اپنے بندے پر, کسی اور پہ نہیں اترا. جیسے مرزا قادیانی, اس نے کہا کہ قرآن میرے اوپر بھی اترا ہے, ایسا نہیں ہے, کسی اور پہ نہیں اترا. یا بعضوں نے کہہ دیا کہ حضرت علی پہ اترنا تھا مگر غلطی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر گیا, ایسا بھی نہیں ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا 15 دن کے بعد وحی نازل ہوئی تھی, یہ اس بات کی دلیل ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے قرآن گھڑنے والے ہوتے جیسے ان کا الزام تھا تو اگلے دن ہی لے کر آ جاتے کہ میں کیوں جھوٹا پڑھوں لوگوں کے سامنے. لوگ اتنی باتیں بنانے لگے ہیں, یہ اس کی وجہ سے اور دین سے دور ہو جائیں گے, ان کو تو پروپیگنڈا کا موقع مل جائے گا, تو میں خود ہی کچھ بنا کے لے آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے بس ہیں, کیونکہ یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور جب وہ چاہے نازل کرے. تو آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, اللہ ہی کی طرف سے اس کا ہی پیغام پہنچانے والے ہیں, اپنی طرف سے ایک لفظ بات بھی بولنے والے نہیں, ورنہ 15 دن میں کبھی تو کچھ کہتے. تو آپ کی حقانیت کی دلیل ہے. اور فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, اور اس قرآن کے اندر کوئی عوج نہیں ہے, کوئی ڈیویشن نہیں ہے, کوئی کنٹروڈکشن نہیں ہے, کوئی کروکڈنس نہیں ہے, کوئی اس میں ٹیڑھ پن نہیں ہے. جیسے ایک لائن سیدھی جاری ہو تو ایک دم ٹیڑھی ہو جائے, یا ایک بندہ بات کرتا رہا کرتا کبھی کوئی بات ادھر کی کر رہا ہے کبھی ادھر کی بات ہے, تو اس کی بات میں عوج ہے. اسی طرح اس کو بھی کہتے ہیں جو انسان سیدھا چل نہیں سکتا, ٹیڑھا ہو کے چل رہا ہے, لنگڑا ہو کے چل رہا ہے, وہ عوج ہے. تو اس قرآن کے اندر کوئی عوج نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں یہ جملہ معترضہ ہے, یعنی اصل میں معترضہ کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں ایک بات کہی گئی ہے, اصل میں کیا تھا, انزل علی عبدہ الکتاب قیما لینذر بأسا شدیدا, تو آگے آگے بات تھی, لیکن یہ بیچ میں ایک بات کی گئی ان کو بتانے کے لیے جو اہل کتاب اعتراضات کرتے تھے اس مضامین یا اس کے مضامین میں کوئی باتیں بناتے تھے, یا آج تک بھی کوئی لوگ اس کے اندر سے چیزیں نکال نکال کے کوئی شوشے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ تمہاری کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس قرآن کے اندر کوئی عوج ہے ہی نہیں, یعنی کوئی امپرفیکشن نہیں ہے, کوئی فالٹ نہیں ہے, کسی ایریا میں بھی نہیں ہے, نہ پڑھنے میں ہے کہ صحیح پڑھا ہی نہ جا سکے, نہ جملوں کے کوئی سٹرکچر میں ہے, نہ اس کی کوئی گرامر میں ہے, نہ اس کے کوئی معنی میں امپرفیکشن ہے, نہ کوئی میسج میں امپرفیکشن ہے, ہر طرح سے یہ کمپلیٹ ہے. جو انفارمیشن بھی اس میں وہ بالکل سچی ہے. اب یہ جو تھے نا وہ لوگوں کو اس طرح کی باتیں کر کے ان کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور آج بھی لوگ جو ہیں جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈاز کرتے نا, وہ قرآن سے نا کچھ ایسی باتیں نکال کے لانے کی کوشش کرتے ہیں, لا نہیں سکتے, اس لیے کہ اس میں عوج نہیں ہے, وہ عوج نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب قرآن کہتا ہے کہ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ساری تعریف ہے, جس نے یہ کلام نازل کیا اس نے اس میں کوئی عوج رکھا ہی نہیں ہے, کہاں سے لائیں گے, یہ چیلنج ہے کہ کوئی عوج لا کے دکھائے, نکال کے دکھاؤ. اس کے بعد مجھے یہ بتائیں, جب آپ یہ بات پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے دل کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ کوئی کچھ بھی کہے, کوئی کتنا بھی نیگیٹو پروپیگنڈا کرے, کوئی کہہ رہا ہے اس میں یہ آیتیں کیوں ہیں, اس میں غلاموں کی یہ بات کیوں ہے, اس میں یہ کیوں ہے کہ مشرکوں کو قتل کرو جہاں پاؤ, اس میں یہ بات ایسے کیوں لکھا ہے, یہ کیوں کیا, یہ इस पे आपके दिल को बेचैन नहीं होना चाहिए, आपके ईमान में तजलजल नहीं होना चाहिए, आपको शकुक व शुभात में नहीं पड़ना चाहिए, कंफ्यूज ना हो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जब फरमा दी इसमें कोई इवज ही नहीं है, बस बात खत्म ही हो गई। हाँ, मेरे हो सकता है मुझे ना कुछ समझ आती हो सकता है, मुझे कुछ और ज्यादा इल्म लेने की जरूरत है ताकि मैं इनको जवाब बता सकूं इसका, लेकिन कभी ये ना सोचे कि इसमें कोई बात है ऐसी जो कि सही नहीं है, कोई बात इसमें इवज की है ही नहीं। और इसके बाद आपको इस पे फखर होना चाहिए कि आपके पास वो किताब मौजूद है जिसमें इवज नहीं है, इसलिए कि दुनिया में, पूरी दुनिया में आज कहीं पे कोई ऐसा कलाम मौजूद नहीं, इस जमीन के ऊपर कोई ऐसा कलाम इस वक्त नहीं है जो सरासर अल्लाह ताला की तरफ से हो और जिसमें जरा बराबर शको शुभे का नामो निशान भी ना हो, किसी के पास भी नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे पास है। तो जब ये सूरत में यहां पे पहुंचे, दिल को साफ कर लें। पहले आया था ना, शुरू किया था कुरान हमने तो पढ़ा था, हमने ला रैबा फी, इसमें कोई शक नहीं, अब यहां पे कह दिया गया कोई इवज है ही नहीं, तो फिर तो दिल साफ हो जाना चाहिए, कोई शक भी नहीं है कि कोई झूठी बात हो और कोई इवज भी नहीं है। अब कोई अगर आपसे कहता है ना कि आप क्या आपके पास दलील है कि देखिए इस्लाम ही सच्चा दीन है, कोई प्रूफ है आपके पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सच्चे नबी हैं, कोई प्रूफ है? जी हाँ, हमारे पास प्रूफ है, और जानते हैं आपका प्रूफ क्या है? कुरान, कुरान इज द प्रूफ, ये बताता है, ये कलाम बताता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे थे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बना के ला ही नहीं सकते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, वो ये बातें कहां से ला सकते थे, ना उन्होंने कभी समुद्रों का सफर किया था, ना उनको हिस्ट्री का इस तरह से पता था, ना उनको असहाबे कहफ का पता था, इसके तराजुम में देख ले, ना उनको फ्यूचर की बातों का पता था कि कयामत में क्या होगा, तो खुद नहीं ला सकते थे ऐसी बात बना के, अगर ऐसी बनानी होती तो वो 40 साल के होके क्यों बनाते, उसे पहले ही बना लेते। तो सबसे बड़ा प्रूफ ये, और फिर इंसानी कलाम होगा ना कहीं वजह आ ही जाए, कहीं को टेढ़पन आ जाए, कोई इंसानी कलाम में देखें, हर बुक में आप देखते हैं ना शुरू में लिखा होता है कि इसमें अगर कोई कोई गलती है आप उसकी निशानदेही करें, आप हमें बताएं इसमें कहाँ कहाँ है, तो फिर हम उसको सही करें, फिर नेक्स्ट एडिशन आता है उसमें उसको वो करेक्शन करके भेजती है, फिर उसे नेक्स्ट एडिशन आता है उसमें और भी करेक्शन की होती है, जो वो फालतू चीज होती निकाल दी गई होती, कुछ इधर उधर की कुछ हो गई गलती हो गई वो निकाल दी। सुभान अल्लाह, कुरान में ये बात नहीं है कि कोई किसी को कहीं गलती मिले ना बता देना फिर नया एडिशन आएगा, कुरान का एक ही एडिशन है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हू अकबर। तो ये है प्रूफ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची हैं, ये है प्रूफ कि इस्लाम ही दीन हक है, क्योंकि वो इस किताब में कोई इवज निकाल ही नहीं सकता, और जब कोई इवज नहीं निकाल सकता इसका मतलब ये इंसानी कलाम ही नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हू अकबर, किसकी तारीफ हो रही है, जहन में रखिएगा, स्टार्ट हुआ सूरा किसकी तारीफ से स्टार्ट हुआ, अल्लाह ताला की तारीफ जिसने इस कलाम को उतारा। आपके जहन के अंदर रहनी चाहिए ये बात कि हर जुमे को हम ये बात समझें कि हमें कितनी बड़ी नेमत मिली है, कितनी बड़ी नेमत मिली है, नेमतों को गिनने लगे तो शायद आप उनमें एंड में कहीं जाकर कुरान भी लिख दें, तो इतनी अहमियत है ना हमारी जिंदगी में इसकी, लेकिन ये कितनी बड़ी नेमत है कि इसके ऊपर अल्लाह ताला ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ उस अल्लाह की है जिसने तुम्हारे ऊपर ये नाजिल किया। कय्यमन, ये कैसी किताब है, अब ये दूसरी इसकी, देखिए पहले इस एक चीज को जो नेगेटिव थी, एवज नेगेटिव चीज है ना, इसको निगेट किया गया कि ये नहीं है इसमें, अब जो पॉजिटिव चीज है वो बताई गई। देखिए किसी चीज की भी जब तारीफ करनी होती है ना, मसलन मैं कहूं ये चीज नुकसानदेह नहीं है, तो ठीक है नुकसानदेह नहीं है, लेकिन हो सकता है फायदे वाली भी ना हो, लेकिन जब मैं कहूं ये चीज नुकसानदेह नहीं है इसमें फायदा है। तो अब ये उसकी तारीफ मुकम्मल हुई है कि नुकसान नहीं है और फायदा है। समझ आई बात? मैं आपको कहूं नुकसान दे नहीं है, आप समझ सकते, आप सोच सकते हैं नुकसान दे नहीं है तो चलो ठीक है, फायदा भी नहीं होगा, बस आम सी चीज है, ठीक है नुकसान नहीं होगा। यही बात यहां पे, इवज नहीं है तो टेढ़पन नहीं है तो ठीक है बात नहीं, लेकिन ये कय्यमन भी है, सीधा है और सीधा रखने वाला है, परफेक्ट है, खुद भी स्ट्रेट और स्ट्रेट रखता है, खुद भी कायम है और कायम करने वाला है। समझ आई? यानी क्या मतलब है, मैं आपको डिफरेंट इसकी बातें बताती हूँ। कय्यमन एक मतलब ये है कि अदलुन फी अहकामी ही व सिदकुन फी अखबारी ही, अपने अहकामात में, ये बिल्कुल इंसाफ पे मबनी है, जितने इसके अंदर अहकामात है ना सारे ह्यूमन नेचर के साथ मुताबकत रखते हैं, कहीं ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि जो बेचारे इंसान कर ही नहीं सकते, उनकी लिमिटेशन से ही बाहर, अदल है उनके अंदर, इंसाफ है तमाम में, चाहे वो विरासत के हैं, चाहे वो निकाह और तलाक के हैं, चाहे वो खुशी और गमी के हैं, वो जो भी अहकाम है जिंदगी गुजारने के, जितने मामलात हैं, जितने कवानीन हैं, जितनी शरीयत है, जितनी शरीयत है, सारी की सारी अदल पे मबनी है। और सिदकुन फी अखबारी, इसकी सारी खबरें सच्ची हैं, इसमें कोई खबर ऐसी नहीं जो कि सच्ची ना हो, जाहिर में भी और बातिन में भी कयीम है, सिर्फ अल्फाज में स्ट्रेट नहीं है, कई चीजें होती हैं, कई जुमले होते हैं ऊपर से सही नजर आते हैं, जब उसकी डेप्थ में जाए तो हिडन उसमें मैसेजेस होते हैं, कुछ और ही तरफ लेके जा रही होती, नहीं ऐसी कोई इम्परफेक्शन नहीं। इसने पूरा का पूरा निजामे जिंदगी कायम करने का तरीका बताया। आप देखिए आज तक आप कितने तरीके सीख चुके हैं, जीने मरने की कितनी बातें सीख चुके हैं, दुनिया के मामलात की कितनी बातें सीख चुके हैं, दीन के मामलात की कितनी बातें सीख चुके हैं, आखरत के मामलात की कितनी बातें आपको समझ आ गई, क्योंकि ये कय्यमन है, वाजे है, सीधा है, स्ट्रेट, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। ये झूठ है बात जो लोग कहते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आती, हमें तो पता ही नहीं चलता, इसलिए कि आपने कुरान नहीं पढ़ा, फिर आप कुरान पढ़ते तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाती, इसलिए कि ये कय्यमन है। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ माने आम आवाम को बताए गए, कुछ माने सिर्फ खास खास लोगों को बताए गए, उनको ही पता था और किसी को नहीं पता, ऐसा भी नहीं है, कय्यमन है। और फिर कय्यमन इंचार्ज को भी कहते हैं, लोगों के मामलात का इंचार्ज, उनको फिक्स करने वाला, ये भी इसकी खासियत है। ये दूसरी इसकी खासियत बताई, पहली क्या थी, लम यजअल्लाहु इवजा, दूसरी क्या खासियत है, ये कय्यमन है, सीधा कर देता है, फिक्स कर देता है जिंदगी के मामलात को, आपके ताल्लुकात को, आपकी फैमिली के साथ, खानदान के साथ, कम्युनिटी के साथ, दुनिया वालों के साथ, इज्तमाई भी यानी एज अ नेशन भी आप, और इनफरादी तौर पे भी, इंडिविजुअली भी, आपके सारे मामलात को सही करता है। और सबसे बढ़ के ये कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक को फिक्स कर देता है, आखरत के मामलात को सही करता है, दुनिया के मामलात को सही करता है। तो ये खुद भी स्ट्रेट है, इसमें सारी बातें स्ट्रेट हैं, और ये लोगों को भी, जिसको हम कहते हैं ना, सीधा करके रख देता है, वाकई अगर इसके ऊपर चलते हैं तो हम सीधे हो जाएं। और सहाबा की जिंदगियां इसकी मिसाल है, कैसे उनकी जिंदगियां बिल्कुल स्ट्रेट हो गई थी, कैसे वो ईमान वाले बन गए थे, कैसे वो अल्लाह के प्यारे बन गए थे, कैसे उनको दुनिया में भी अल्लाह ने कामयाबियां दी थी, क्योंकि इस कय्यम के ऊपर चले थे। और आज भी नंबर वन रीजन जो किसी के इस्लाम लाने का, वो यही है, कुरान, ये कुरान है, बातें नहीं है। और कल भी यही था, ये स्ट्रेट बुक तुम्हें मिली, ये अवज से बचा लेती है, सोच को भी टेढ़ा होने से बचा लेती है। नंबर तीन बात, लियुंजरा बसन शदीदम लदुन हो, ये इसलिए आई है ताकि वार्न कर दे, युंजरा मीन ली मीन्स ये वजह है इसके आने की, ये रीजन के लिए आता है, लामे तालील इसको कहते हैं, इल्लत के लिए आता है कि क्यों आई है किताब, इसलिए कि अल्लाह ताला केयर करता है तुम्हारी और वो तुम्हें वार्न करना चाहता है। और वॉर्न किससे किया जाता है? कोई जाहिर है, कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई ऐसी चीज होती है ना, कोई कोई खराबी होती है तो उससे कोई वार्निंग दे देता है। जैसे अब वार्निंग आती है, तूफान आ रहा है, वार्निंग मिल जाती है, टॉर्नेडो आ रहा है, ये वार्निंग हो जाती है। तो आप देखें, जंग की वार्निंग हो जाती है। तो ये वार्निंग्स दुनिया में भी दी जाती है, फिर आप क्या कहते हैं? कितने बुरे हैं ये, हमें डराते हैं। कहते हैं कोई ऐसे, वो तूफान की, हरिकेन की वार्निंग दे दे, अब भाई इतना बड़ा समुद्री तूफान आ रहा है, इसकी वार्निंग आ गई, आप कहते हैं हाँ ये शुक्र है इन्होंने हमें बता दिया, शुक्रिया करते हैं। लेकिन जब कुरान वार्निंग देता है ना कि जहन्नुम को मजाक ना समझो, बहुत बुरी चीज है, हुतामा है, हुतामा ग्राइंड कर देने वाली है, इन आजाब क्या ना हरामा, बहुत बुरा इसका आजाब है, बहुत शदीद चीज है, बड़ी बुरी जगह है ठहरने की। तो इंसान कहता है आए डराने वाली बातें ना करो हमें, वो डराते ही रहते हैं ये, आप उसको क्यों नहीं कहते कि ये क्यों डराता है हमें, जो फोरकास्ट में बताता है कि तूफान आ रहा है, आप क्यों नहीं कहते इनको कि ये आपको क्यों वार्निंग देते हैं जंग की, आप क्यों नहीं कहते इनको कि ये क्यों वार्निंग दे रहे हैं कि इस जगह पे मत जाओ, यहाँ क्यों, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है, आप क्यों नहीं इनको कहते कि आपको वार्निंग दे रहे हैं कोविड से, इससे कि भाई यहाँ पे जाएंगे कोविड फैला हुआ है आप वहां ना जाए, क्यों नहीं कहते? आपको कुरान की वार्निंग्स बुरी लगती, जबकि वार्निंग देने वाला असल में किस लिए वार्निंग देता है? वो आपका हमदर्द होता है, वो नहीं चाहता कि आप किसी नुकसान में पड़े, इसलिए जो हुकूमतें होती हैं वो अपने नेशंस को, अपनी कौमों को वार्निंग्स देती हैं, इसीलिए जगह जगह पे वार्निंग साइंस लिखे जाते हैं ताकि आप किसी मुश्किल से बच जाए। अल्लाह ताला सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़े अजाब से वार्निंग देता है, लेकिन हमें ये वार्निंग्स पता नहीं क्यों पसंद नहीं आती, कहते हम डर जाते हैं, यानी हम वहां पहुंच गए और फिर उसमें पड़ गए तो तब फिर क्या फायदा होगा? फायदा तो तब है जब कोई पहले से ही बता दे, कोई आपको कहता है आप आगे ना जाएं, आगे जो है ना वो गड़ा है, उसमें जो जा रहा है, इधर से जो गाड़ी जा रही है उधर गिर जा रही है, अरे आप तो उसका इतना शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू सो मच आपने मुझे बता दिया। अल्लाह ताला बता रहा है बासन शदीदा, बास कहते हैं आफत, मुसीबत, बड़ी तंगी, तकलीफ, अजाब, पनिशमेंट, इस सब को बास कहते हैं, ठीक है? जंग के लिए भी बास आता है, जिस्मानी तकलीफों के लिए भी बास आता है, ये इसलिए नाजिल हुआ ताकि बड़ी मुसीबत से, बड़ी सख्त तरीन अजाब से वॉर्न कर दे इंसान, यही होता है कि भाई इंसान को यानी डरा दे कि भाई अगर तुमने अच्छी ये किया ना तो ये कुछ हो जाएगा। तो इस बात से, इस मुसीबत से इंडिविजुअली भी और इज्तमाही तौर पे भी जो आने वाली है उससे वॉर्न कर दे। ये कौन सा फितना है, कौन सी मुसीबत है, कौन सी बड़ी तकलीफ है जो आने वाली है? इससे मुराद उलमा ने डिफरेंट चीजें ली हैं, बाज ने कहा कि इससे मुराद ये है कि जो फितना है दिज्जाल आने वाला है, उससे वार्न करने के लिए, इसलिए कि जब वो आ जाएगा ना तो बड़ी जंग भी होगी, मलहमतुल कुबरा, आर्मेगेडोन जिसको कहते हैं, बहुत तबाही होगी, लोगों के ईमान जाते रहेंगे, तो इससे वॉर्न करने के लिए आया। अल्लाह अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तुम्हारे बाद सबर का दौर आने वाला है, डटने का दौर, वाकई जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आगे आगे हालात मुश्किल होते चले जाएंगे, सब्र करना पड़ेगा, अपनी नफ्स की ख्वाहिशात से टकराना पड़ेगा, नफ्स तो कहता है मुझे ये दो ये दो, जो दुनिया की और अट्रैक्शंस हैं उनसे अपने आप को होल्ड करना पड़ेगा, और बड़ा मुश्किल होगा सबर करना। और इसी तरह उनके लिए इंजार, दूसरा इसका मतलब ये है, उनके लिए बासन शदीदा है, डराए उनको जो इस कुरान का इनकार करते हैं, इसको नहीं मानते, उनके लिए। और याद रखिए, कुरान करीम को ना मानना या इसको छोड़ देना, ये भी है कि इसको पर ईमान ना लाया जाए, लेकिन इसको छोड़ देना ये भी है कि इसको ना पढ़े, ना समझे, ना इस काबिल समझे कि इसके लिए कोई वक्त निकाले, ना इसको इसको जानने के इसमें है क्या, ये भी इसको छोड़ देना ही तो है। वो क्या आपका ईमान है कि जब आपने कभी कुरान ही नहीं उठाया, कभी बॉदर ही नहीं किया देखने को कि ये कुछ कह रहा है मुझे। अल्लाह ताला ने फरमाया मिल्ला दुन्हु, उसकी पास से। लदुन उस वक्त आता है जब उसके पास मौजूद हो कोई चीज, किसी के पास कोई चीज होती है तो उसको कहते हैं मिल्ला दुन, वरना तो आइंदा भी है पास, मगर मे भी उसके पास उस वक्त ना हो। तो ये एक अश्योरिटी है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये आएगा जरूर, ये अवॉइड नहीं हो सकता। ये वार्निंग सबके लिए भी हो सकती है, जितने लोग हैं, कयामत आनी है, एक वार्निंग है कि उस दिन बहुत शदीद, वहां उस दिन के अजाब से। ये उनके लिए भी हो सकता है जो कुरान को छोड़ देते हैं और उसका इनकार कर देते हैं, उनके लिए भी हो सकता है। ये इस बात के लिए भी हो सकता है कि दज्जाल का फितना आना है और एक बड़ी जंग आनी है, तो पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए भी है, और इसका इनकार करने वालों के लिए भी है। तो इसमें वह युबश्शिरुल मुमिनीन, बशारत दे दें उन मोमिनों को। किन मोमिनों को? मोमिन के लिए तो वैसे ही बशारत नहीं, यहाँ पे कोई खास किस्म के मोमिन है जो कुछ और भी काम करते होंगे। वो कौन है? अल्लदीन यामलून सालिहात, जो सालेह अमल करते हैं, उन मोमिनों के लिए। अन्ना लहुम अजरन हसना, कि उनके लिए अच्छा अजर है। अच्छा, अब ये बात समझने की है कि देखिए, जो ऐसा वक्त होगा उसमें मोमिनों के लिए बशारत है। अगर हम इसको इस तनाजुर में देखें कि जब फितना दज्जाल आएगा या कुर्बे कयामत होगा, उस तनाजुर में देखें तो मोमिनों के लिए बशारत है, यानी अब दुनिया के तौर पे तो कोई अजर की तवक्को नहीं रखी जा सकती, अजरे हसना तो आखरत में मिलेगा ना। अजरे हसना जो है वो आखरत में, आखरत का अजर है। ओके, वहां दुनिया से तो अब बिल्कुल कोई आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहां पे कोई फिजिकल रिवॉर्ड मिल जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर हम ये देखें कि जो इनकार करते हैं, जो इसको छोड़ देते हैं, तो उनमें जो इनकार करने वाले हैं उनको तो वॉर्न कर दो, और जो लोग इसके ऊपर ईमान रखने वाले हैं, इसको पकड़ के चलने वाले हैं, इसके ऊपर अमल करने वाले हैं, उनके लिए बशारत है, ठीक है। अच्छा, और अजरे हसना क्या है? अजरे हसना आप देखें नकेरा है, अजरन नकेरा। नकेरा कब होता है? जब उसमें अमूम आ जाता है, यानी हर तरह का, हर किस्म का अजर। तो अजरे हसना में सब किस्म के रिवॉर्ड्स, तरह तरह के रिवॉर्ड्स उनको मिलेंगे। और ये बात को जहन में रखना जरूरी है कि ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो कहते हैं हम मुसलमान हैं। वे बशारत किन के लिए? जो ईमान रखते। ईमान क्या होता है? 100% बिलीफ, एब्सोल्यूट बिलीफ कि ये सच है, एब्सोल्यूट बिलीफ, यानी जिसमें जरा बराबर भी शक ना हो। और साथ साथ क्या है, या अमलून सोलेहात, उनके साथ अमल भी है। ये हमें बात बताती है, एम्फसाइज करती है कि अमल कितना जरूरी है। वो ईमान जिसका इंसान कहे कि मैं ईमान वाला हूं और अमल साथ ना हो, तो फिर वो ईमान नहीं है जिसके ऊपर बशारत दी जाए, बल्कि यहां वो ईमान जरूरी है जो साथ सौले अमल लेकर आए। और यह अमलून मुजारे है, मुजारे प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए आता है, यानी कंटिन्यूसली और हमेशा करता रहे। अमले साले, अमले साले की बहुत सारी नेकियां, बहुत सारी हैं, वो हर तरह की नेकी करे, ठीक है। तो यानी हमें पता चला कि अगर खुशखबरियां पानी हैं तो उसका तरीका क्या है। और ये भी पता चला है कि दुनिया में अगर कोई अजर मिल भी जाए, अजर हसाना नहीं है, इसलिए कि दुनिया तो खत्म हो जानी है, यहां तो फना है। अजर हसना सिर्फ आखरत का अजर है, और उसको एक्सपेक्ट वो लोग सिर्फ कर सकते हैं जो ईमान लाके सौले अमल करने वाले, उनको खुशखबरी मिल सकती है। बाकी फिर फूल्स वर्ल्ड में रहते हैं जो ये समझते हैं कि हमने अपने नाम मुसलमानों वाले रख लिए, लेकिन अमल करना जी बड़ा मुश्किल है, वो तो नहीं हम कर सकते, वो तो नहीं हमसे होता, ठीक है। तो ऐसा दौर भी आएगा, फिर अमल करना बड़ा मुश्किल हो जाना है, लेकिन तब भी याद रखना उस दज्जाल के दौर में भी अमल अमल। इसलिए कि मोमिन, सुबह कोई मोमिन होगा शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा सुबह को काफिर हो जाएगा। और इंसान अपने आप को समझता होगा कि मैं ईमान वाला हूं, लेकिन उसका ईमान जा चुका होगा। अल्लाह ताला को ये जुबानी कलामी वाला नहीं चाहिए, अल्लाह ताला को वाकई जो अमले सौले के साथ ईमान है वो जरूरी है खुशखबरियां पाने के लिए, ठीक है। और ईमान सिर्फ अल्लाह पर नहीं, अल्लाह ताला पर भी, रसूलों पर भी, फरिश्तों पर भी, किताबों पर भी, यौम आखरत पर भी, तकदीर पर भी, इनमें से कोई भी अगर ईमान नहीं है तो ईमान मुकम्मल नहीं होता, समझ आए। तो इसलिए हमें ये समझना है कि ईमान के साथ शर्त भी है, और वो अमले साले की शर्त है। अच्छा, अब अजर हसना को जरा देख लें। ये अजर हसना क्या अजर है? जन्नत, जन्नत। और जन्नत कैसी है जानना जरूरी है कि जन्नत भी कैसी है, ताकि दिल कहे कि ऐ अल्लाह मुझे ऐसी जन्नत में दाखिल कर दे। वो जन्नत है जिसके फलों का एक खोशा जमीन और आसमान की सारी मखलूक खा ले तब भी खत्म ना हो। वो ऐसी जन्नत है जिसके महल्लात सोने और चांदी की ईंटों से बने। वो ऐसी जन्नत है जिसका एक दरख्त है जिसका साया ऐसा लंबा होगा कि इसके साये में घुड़सवार 100 साल तक चलता रहे तब भी साया खत्म ना हो। जिसमें एक कमान के बराबर जगह दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उसकी सारी नेमतों से ज्यादा कीमती है। अल्लाह अकबर, जिसके अंदर रहने वाली औरत उसका दुपट्टा भी इतना कीमती होगा कि अगर वो अपने दुपट्टे को दुनिया में ले आए तो दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है वो सबसे ज्यादा कीमती है। अगर वो दुनिया में झांक ले तो मशरिक और मगरिब के दरमियान की हर चीज रोशन हो जाए और परफ्यूम्ड हो जाए, खुशबू से मुअत्तर हो जाए। जिसके पत्थर भी मोती और याकूत है, जिसकी मट्टी जाफरान है, जिसका गारा मुश्क है। अल्लाह अकबर, जिसमें बुढ़ापा नहीं, जिसमें मौत नहीं, जिसमें जुदाई नहीं, जिसमें बीमारी नहीं, वो जन्नत है। اللهم انا نسالك جنه الفردوس، اللهم جنت الفردوس عطا فرما. جنت وہ جگہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت الفردوس کو. اور کیسے ہم امیجن کر سکتے ہیں اس جنت کو؟ اس لیے کہ ہم دنیا سے چاہتے ہیں کہ ہم اس کو امیجن کریں، دنیا کی چیزیں دیکھ کے، یہاں کے جھرنے، یہاں کی نہریں، یہاں کے گھر، یہاں کے محلات دیکھ کے ہم سوچتے ہیں جنت ایسی ہوگی، شاید پھر پتہ نہیں کیسی ہوگی. جبکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، حدیث میں آتا ہے دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس کو دیکھ کے کیسے جنت کو امیجن کر سکتے؟ جو مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے اس سے کیسے جنت امیجن کرو گے؟ سوچو. ماکثین فیہ ابدا، اس میں رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ. خالدین فیہ کیوں نہیں کہا؟ ماکثین اس لیے کہ ماکث کہتے ہیں، مکث کہتے ہیں کمفرٹیبلی اپنے آپ کو کہیں اسٹیبلش کر لینا، مضبوط کر لینا، جم جانا کہیں، ہمیشہ ٹھہرنے والے، ہمیشہ ہمیشہ. مکث کسی چیز کی امید میں ٹھہرنے کو بھی کہتے ہیں کہ وہاں اتنی ایکسائٹمنٹ ہوگی کہ آلویز کسی چیز کو آگے لک فارورڈ کر رہے ہوں گے کہ اب یہ ملنا ہے، اب یہ ملنا ہے، اب یہ ملنا ہے، اب اس سے بڑھ کے، اب اس سے بڑھ کے. اسٹیگنینٹ نہیں ہوگی، ایک سے بڑھ کے ایک ایکسائٹمنٹ ہوگی. دنیا میں ایکسائٹمنٹس ختم ہو جاتی ہیں، جنت کی ایکسائٹمنٹ ختم نہیں ہوگی. دنیا میں دیکھیں آپ کو کوئی بھی چیز مل جاتی ہے نا، اس کی ایکسائٹمنٹ کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں آپ کو کوئی گھر ملتا ہے، جب نیا نیا آپ گھر لیتے ہیں تو اس وقت کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں. لیکن 10 سال بعد اسی گھر کو آپ کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے، عام سا ہی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مینشن کیوں نہ ہو، عام سا لگنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا ایک اور مثال سے سمجھیں، جو آپ کی جب شادی ہوئی تھی، جتنی شادی شدہ خواتین ہیں، جو آپ کی شادی ہوئی تھی، جو پہلی رات تھی وہ کیسی تھی؟ کیا 10 سال بعد ویسا ہی مزہ آتا ہے، ویسا ہی شوق اور ویسی ایکسائٹمنٹ اور ویسے ہی جذبات اور ویسی سب چیز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا، سب کچھ عام ہو جاتا ہے. وہ جو ایک بالکل نئے شادی شدہ جوڑے کی پہلی رات دوسری رات ہوتی ہے، ویسے کچھ بھی نہیں رہتا. جنت میں ہر دن ایسا ہی ہوگا، ہر مزہ ویسا ہی ہوگا جیسے آپ کی پہلی رات تھی. جنت میں ہر چیز ایسی ہوگی جیسے آپ کا پہلی دفعہ آپ اپنے گھر میں سٹیپ کیے تھے اور جو ایکسائٹمنٹ تھی. اور یہاں پہ ہر چیز کا یہ ہوتا ہے، اچھا اس میں یہ ہے نا، اگر یہ بھی ہوتا نا تو کتنا اچھا تھا نا. پرفیکشن نہیں ہے نا یہاں پہ، یہ جو پرفیکشن کی تلاش ہے نا، یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالی ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ سیٹسفائی ہو ہی نہیں سکتی. ہم کتنا بھی اچھا گھر بنوا بھی لیتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ اس نے یہاں پہ ذرا گڑبڑ کی ہے، یہ اس طرح سے کرنا چاہیے تھا، یہ اس گھر کے اندر ایسا تھا، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے. لیکن جنت میں ایسا نہیں، جنت کی ہر چیز میں پرفیکشن ہے. جنت کی ہر چیز ایسے ہے کہ جس میں انسان یہ نہیں کہے گا کہ اچھا اب اس کے اندر یہ کچھ اور ہوتا تو اچھا تھا، یہ بھی مل جاتا تو اچھا تھا، وہ والی چیز نہیں ہوگی. تو اس نے کبھی ایکسپائر نہیں ہونا، اس نے کبھی ختم نہیں ہونا. کتنی بڑی چیز ہے، ماں کی سین کے لفظ سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں ایکسائٹمنٹ بڑھتی ہی جائے گی. تو دیر از نو بوریت، ایسا نہیں ہوگا کہ رہتے رہتے اب بور ہی ہو جائیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں نا جنت میں بور نہیں ہو جائیں گے پھر؟ نہیں، بوریت ہو ہی نہیں کی نہیں، اس لیے کہ آلویز ایکسائٹمنٹ ہوگی، اور کوئی چیز ہوگی، اور کوئی چیز ہوگی اس کی ایکسائٹمنٹ. اور جو جذبات ہیں نا وہ بھی اسی طرح ایکسائٹڈ میں آپ رہیں گے ہمیشہ. اللہ اکبر. اور اس کا کیا مقصد ہے؟ 3 مقصد ہم نے دیکھ لیے نا قرآن کریم کے، 3 باتیں اس کے بارے میں دیکھ لیں. لم یجعل له عوجا قیما لیذر باسا شدیدا ایبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. 4 باتیں ہوں. اچھا 5ویں بات کیا؟ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا. یہ اس لیے بھی اتری، لی جو ہے نا وہ پیچھے سے یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ یہ ان کو وارن کر دے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا بنایا، اولاد ٹھہرائی. कौन लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के लिए औलाद ठहराई है? ईसाई सबसे पहले, जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा। यहूदियों में भी एक सेक्ट ऐसा है जो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। फिर मुशरिकीन के अंदर वो मलाइका को अल्लाह की बेटियां कहते थे। आज भी ग्रीक मेथोडोलॉजी जो है ना, उसमें खुदा के बेटों और बच्चों का, ये उसकी फैमिली का एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया उनको भी डरा दो, उनको भी वार्न कर दो इस अजाब से जो बासे शदीद है, उससे उनको वार्न कर दो। ये मैसेज है कुरान का। क्यों? इसलिए कि मा लहुम बिही मिन इल्म, नहीं उनके लिए इसमें से कोई इल्म, यानी इसके बारे में कोई इल्म नहीं उनको। ये नहीं कहा गया कि उनको इल्म है ही नहीं, ये नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया कि इनमें से कोई इल्म नहीं, यानी इस बात का कोई इल्म नहीं, इस बात के बारे में कोई इल्म नहीं। कौन सी बात? ये जो औलाद ठहरा रहे हैं उसके बारे में कोई इल्म नहीं इनको। ये कैसी बात है? ना इनको कोई इल्म है इसका, और इनसे पूछा जाए कि तुमने ये कहां से ये इल्म लिया, तो कहते हैं हमारे बाप दादा भी ऐसे ही कहते थे। तो वलाली आबाई, इनके आबाओ अजदाद को भी कोई इल्म नहीं, ना इनको कोई इल्म है, ना इनके आबाओ अजदाद को कोई इल्म है। यानी ये बगैर इल्म के की जाने वाली बात है, इसके पीछे कोई ठोस नॉलेज नहीं है, कोई सॉलिड बात नहीं है। किसी नबी ने नहीं ये बताया, किसी किताब में नहीं ये लिखा हुआ, इसकी कहीं कोई दलील नहीं है। बल्कि क्या है? कबूरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम, ये बहुत बड़ी बात है जो ये निकालते हैं अपने मुंहों से। ये मुंह की सिर्फ बात है, ये अपने मुंह से बहुत बड़ा कलमा निकाल रहे हैं। इन यकूलूना इल्ला कदीबा, ये नहीं कह रहे मगर एक झूठ कह रहे हैं सिर्फ। अब क्या बताया गया कि अल्लाह ताला के लिए औलाद ठहराना सबसे बड़ा शिर्क है, सबसे बुरा शिर्क है। इसलिए कि ये तमाम किस्म की तौहीद में, ये यानी जो अल्लाह ताला की औलाद ठहराना है, हर किस्म की तौहीद के अंदर ये शिर्क किया गया। रबूबियत में शिर्क, कि अल्लाह ताला मालिक है तो फिर ये भी मालिक हुआ, जो औलाद है वो भी मालिक ही होती है। बाप अगर मालिक होता है तो औलाद भी उस चीज की मालिक होती है। अलूहियत में भी, कि अगर बाप की पूजा की जाएगी फिर बेटे की भी की जाएगी, उसकी औलाद जो है, और बेटा है तो असमाओ सिफात में भी जो बाप के अंदर सिफात है वही बेटे के अंदर भी होगी। तो सारे शिर्क, हर किस्म का शिर्क इसके अंदर आ जाता है। रबूबियत में भी शिर्क आ गया, अलूहियत में भी आ गया, असमाओ सिफात में भी शिर्क आ गया। अल्लाह ताला ने फरमाया इनको कोई इल्म नहीं, यानी हो सकता है इनको और इंसाफ की बात की गई ना, ऐसा नहीं कहा गया कि कोई किसी किस्म का भी इल्म नहीं, इल्म है लेकिन इस मामले में कोई इल्म नहीं है। इनके आबाओ अजदाद को भी नहीं था इल्म, ये कहते हैं ना कि हमारे बाप दादा ऐसे करते थे, उनको भी नहीं था कोई इल्म। ये तो इतनी बुरी बात है कि जिसके बारे में सूरह मरियम में आता है कि आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ एक्सप्लोड हो जाए कि ये कहते हैं कि खुदा की औलाद है। इतनी ये बुरी बात है, कभी आपको भी बुरी लगती है? ये सवाल ये है कि कभी आपको भी ये भारी लगती है बात, जो आसमानों को जमीन को पहाड़ों को भारी लगती है कि वो फट जाए, ये इतनी बुरी बात, वो आपको भी बुरी लगती है? सोचें, अगर इतनी बुरी लगती है तो फिर क्रिसमस कैसे मनाते हैं आप, और इनको मुबारकबाद कैसे देते हैं आप? क्योंकि वो तो कह रहे हैं खुदा का बेटा पैदा हुआ, उसकी बर्थडे है, तो ऐसी उनकी खुशी में आप खुश कैसे हो सकते हैं? कैसे आप क्रिसमस ट्री लाके लगा सकते हैं? कैसे आप गिफ्ट्स एक्सचेंज कर सकते हैं? क्या आपको पता भी है किस बात की खुशी कर रहे हैं? कितनी ईवल बात है ये, जबकि हम कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई औलाद है, ना वो जना गया, ना उसको किसी ने जाना, ना उसने किसी को जाना, ना उसके कोई माँ बाप है, ना उसकी कोई औलाद है। दोनों तरफ से आपने कह दिया, ना उसको किसी ने जना है, ना उसने किसी को जना है आगे। तो यहां तो आपका लम या लिद व लम यूलद पे ईमान हो सकता है, या क्रिसमस पे ईमान हो सकता है, एक पे ही हो सकता है ना। एक तरफ आप कहते हैं खुदा का बेटा जो है उसकी बर्थडे है, खुदा का बेटा मानना है उसकी बर्थडे है, और ये एक तरफ कहते हैं लम या लिद व लम यूलद। हमारे तो दिल फट जाने चाहिए इस बात पे, ये जिहालत की बात है। और इनके अबाओ अजदाद के पास भी कोई इसका क्लू नहीं था कि कहां से उन्होंने ये अकीदा लिया। ये समझते नहीं है ये कितनी कबूरत, कितनी बड़ी बात है। हदीसे कुदसी में इब्ने आदम मुझे गाली देता है और उसको जेब नहीं देता कि वो मुझे गाली दे, और उसका गाली देना क्या है कि वो मेरे लिए औलाद ठहराता है, ये अल्लाह ताला फरमाता है। तो ये औलाद ठहराना, अल्लाह को गाली देना, मुझे आपको कोई गाली दे हम तो आपे से बाहर हो जाए। अपनी जात की तो इतनी इज्जत है कि उस गाली किसी की बर्दाश्त ना हो, और वो गाली दे रहे हैं और हम उनको मुबारकबाद कह रहे हैं। तो कुरान करीम का एक मकसद यहां पे ये पता चला कि अकीदे को सही करना लोगों के, जो लोगों ने खुद ही घड़ ली है ना बातें कि काल तखज अल्लाह वलादा, अल्लाह ने तो बेटा बनाया है, इन बातों को रिजेक्ट करना। क्योंकि कुरान कयामत तक आया है, और कयामत तक कोई अल्लाह की औलाद अगर ठहराता है तो उन सब की रिजेक्शन है रहती दुनिया तक के लिए। तो इससे पता चला अल्लाह ताला के बारे में अपनी तरफ से खुदा के लिए कभी भी कोई बात ना लगाएं। यहां पे तो औलाद की बात पता चली ना कि औलाद की पता तो वो तो शिर्क ही हो गया, मगर इल्म के बगैर कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए अल्लाह के बारे में। अल्लाह ताला के बारे में हमें कहां से पता चलेगा, सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स सिर्फ कौन सा है, किताब सुनना, अल्लाह की किताब जिसमें उसने बता दिया, और हदीस से हमें पता चलेगा। इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है जहां से हमें पता चल सके कि अल्लाह ताला कैसा है, या उसकी औलाद है कि नहीं है, या उसके कोई वालदेन है कि नहीं है, या वो कब से है और कब से नहीं। ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ हमें कुरान और हदीस से पता चलती है, खुद अपनी तरफ से हम बना नहीं सकते चीजें, खासतौर पर जिस चीजों की कोई एविडेंस ही नहीं, कोई बेस ही नहीं। और शैतान का एक तरीका ये, कुरान कहता है अंतकुल अल्लाह माला तालमून, कि तुम वो अल्लाह के बारे में बातें करो जो तुम्हें नहीं इल्म है, जिनका वो इस तरह से करके इंसान को गुमराह करता है, ये उसका एजेंडा है। तो इंसान जो है वो जब ऐसी बात करता है तो वो एक बहुत बुरी बात कर रहा होता है। और सिर्फ इसमें ही नहीं, जनरली भी हमें ये बात समझनी चाहिए कि भी यहाँ पे कहा गया ना तखरुज मिन अफवाहिहिम, मुंह की बातें, ऐसे ही बस मुंह दर मुंह बात नहीं कर देनी चाहिए केयरलेसली, कि भाई सोचे समझे बगैर, जिसकी कोई वेरिफिकेशन ही नहीं है, जिसका कोई सबूत ही नहीं है, बस ऐसे ही बात करते जाना, कोई दलील ही नहीं। मसलन ये कह देना ये सारे ये जो दीन वाले होते हैं ना, बस इनकी बातें ही हैं, फ्रॉड होते हैं ये जी, वो जी बड़े ये ऐसे होते हैं, ये तो ये करते हैं, ये बड़े करप्ट होते हैं, हिजाब वालियों को देख लिया, कुरान पढ़ने वालों को देख लिया, बड़े अपने आप को समझते हैं, ये तो ये करते हैं, सारों को ही बीच में रगड़ दिया। कभी ये कह दिया ये तो कुरान में कहां लिखा भाई, अलग कुरान में लिखा हुआ उनको पता ही नहीं, कौन सी हदीस में है, कौन सा इस्लाम ये कहता है, कितनी आराम से कह देते, ये क्या है अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना है। अगर वो बात कुरान में है या हदीस में है, अच्छा सबसे ज्यादा आपको ऐसे लोग ये बातें कहते नजर आएंगे जिन्होंने कभी ना कुरान पढ़ा ना हदीस पढ़ी। उनसे पूछे कितनी दफा तुमने कुरान पढ़ा, कितने साल से पढ़ रहे हो, कितनी हदीस का तुम्हें इल्म, बेसलेस बातें किए जाना, नहीं जी कौन सा इस्लाम ऐसे कहता है, नहीं जी कौन सी हदीस ऐसे, तुम इल्म तो पहले लो। तो ये जो मुंह से बस बातें निकालना होती है ना, ये दुरुस्त नहीं है काम, ये वैसे ही नहीं सही काम किसी मामले में भी। और कहां अल्लाह ताला के बारे में कहना, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस आदत को ही खत्म करना चाहिए। और देखिए हमारे ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगा दे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला रहम करे, मसलन किसी औरत के ऊपर कोई इल्जाम लगा दे कि तो ये तो बुरी औरत है, जाहिर औरत के लिए सबसे बड़ी ये चीज होती है ना कि उसकी इज्जत के ऊपर कोई अगर उंगली उठा दे तो बहुत बड़ी बात होती है। तो देखें कि इंसान कैसे उसके बर्दाश्त उस इंसान को करेगा,
उसको देखना भी नहीं चाहेगा। कहां ये कि उसके ऊपर उसको कोई खिलाए पिलाए, उसको कोई उसके साथ अच्छा सलूक करे। लेकिन अल्लाह ताला कैसा है, हदीस में आता है कोई अल्लाह ताला से ज्यादा सबर करने वाला नहीं। वो इन इस पे जो तोहमत लगाते हैं, जो अल्लाह ताला पे तोहमत लगाते हैं, उसके बारे में झूठ गढ़ते हैं, उसको उसके लिए औलाद ठहराते हैं, वो फिर भी उनको रिस्क देता है, फिर भी उनको रिस्क देता है। सोचे, जबकि कहीं उन्होंने ना पढ़ा, ना कहीं कोई सबूत है, ना कोई बात है, और ऐसे ही बस बातें लगा दी उसका बेटा है बगैर इल्म के। तो ये बड़ी बात है। इस शिर्क को यहां पे निगेट कर दिया गया, इस शिर्क को यहां जड़ से उखाड़ दिया गया कि ये इंसान की गुमराही का बहुत बड़ा एक सबब है कि वो ऐसी बातें कर दे अल्लाह ताला के बारे में जो उसकी शान के लायक नहीं है। यकूलूना इल्ला कदीबा, नहीं ये बोलते मगर एक झूठ, सिवाय झूठ के इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की बात है। अब हमें यहां से ये भी पता चलता है कि पूरा का पूरा ये लाए है। जितने लोग ऐसी बात करते हैं, जैसे आपको कह दिया जाए ना ये झूठ है, ये इतनी पावरफुल बात नहीं है, लेकिन नहीं ये मगर सिर्फ एक झूठ है। जैसे मैं कहूं कोई नहीं जाएगा सिवाय आयशा के, और दूसरा मैं कहूं आयशा जाएगी, कौन सी बात ज्यादा पावरफुल है? आयशा जाएगी तो उसके साथ हो सकता है फातिमा भी जाए, हो सकता है उसके साथ खतीजा भी जाए, हो सकता है ना बाद में। लेकिन जब मैं कह दूं कोई नहीं जाएगा सिवाय आयशा के, तो इसका मतलब है कि सब की नफी हो गई, सिर्फ एक को आपने कहा कि हाँ। इस तरह सब बातों की नफी कर दी गई कि कोई बात भी नहीं है इसमें सिवाय एक झूठ के। बहुत पावरफुली इसको निगेट किया गया उनकी जो ये स्टेटमेंट है। तो इस तरह के शिर्क से और हर किस्म के शिर्क से अल्लाह ताला की पनाह में आ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस शिर्क से तो अल्लाह हमें बचाए, और हर किस्म के शिर्क से हम सबको महफूज रखे, क्योंकि दज्जाल भी इंसान के ईमान का लुटेरा होगा, वो शिर्क पे इंसान को लेकर आएगा।